लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा का सृष्टि की देख रेख हेतु विश्व दिवसीय प्रार्थना। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, आशा और सृष्टि के संग कार्य सृष्टि की देख रेख हेतु वैश्विक प्रार्थना की विषय वस्तु है, जो 1 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। यह विषय संत पौलुस के द्वारा रोमियों के लिखे गए प्रेरितिक पत्र से लिया गया है, जिसके बारे में प्रेरित व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार और मुक्ति की आशा जो हमारे लिए निश्चित है, जिनका जन्म विश्वास में होता है। मुख्यतः यीशु में नया जीवन जीने का अर्थ हमारे लिए क्या है। सृष्टि की देख रेख हेतु लिखित अपनी वैश्विक प्रार्थना में संत पापा लिखते हैं, इसकी शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं जिसका अपने में कोई निश्चित जवाब नहीं है। यदि हम सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें विश्वास किस रूप में मिला है? यह इसलिए नहीं कि हम किसी उत्कृष्ट तर्क से परे शक्ति, अपने में हासिल नहीं की जाने वाली रहस्य और सुदूर ईश्वर पर, जो अदृश्य और अनामित चीज पर हमारा विश्वास है, बल्कि जैसे कि संत पौलुस हमें बतलाते हैं, यह इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। हम सभी विश्वासी हैं क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उडेला गया है और वह आत्मा हमें अब वास्तव में उस विरासत के अधिकारी बनाता है। वह हमें निरंतर अनंत चीजों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि यीशु हमें अपनी पूर्ण सच्ची मानवता में प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों को सृजनात्मक और करुणा में क्रियाशील होने हेतु मदद करते हैं। वे हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता की एक बड़ी यात्रा में आगे भेजते हैं, यद्यपि वे हमारे बीच में आत्मा के विचार और दुनिया में कार्य करने के तरीकों को दूर नहीं करते हैं, जिसके फलों को हम एक दूसरे से भिन्न पाते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रथम फल, जो सारी चीजों को अपने में समाहित करता है, प्रेम है। पवित्र आत्मा से संचालित विश्वासी गण ईश्वर की संतान, ईश्वर की ओर अभिमुख होती और उन्हें अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, जैसे कि यीशु ख्रिस्त ने स्वयं किया। इससे भी बढ़कर वे इसे स्वतंत्रता में करते हैं। वे जो अपने को मौत के भय से मुक्त पाते हैं, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यह हमारी महान आशा है। ईश्वर का प्रेम विजयी हुआ है और वह सारी चीजों पर विजयी होता रहता है। वास्तव में यहाँ तक कि शारीरिक मृत्यु की स्थिति में भी भविष्य की महिमा उनके लिए सुनिश्चित होती है, जो अपनी आत्मा को नए जीवन से पोषित होता पाते हैं। यह आशा हमें निराश नहीं करती है, जैसे कि हम इसे आने वाली जयंती वर्ष में घोषित पाते हैं। संत पापा लिखते हैं, ख्रिस्तीय का जीवन इस भांति अपने में एक विश्वास का जीवन है, जो प्रेम में क्रियाशील और आशा से भरा है, जैसे कि हम ईश्वर की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। हम ईश्वर की महिमा में आने से होने वाली देर से व्याकुल नहीं होते हैं। ख्रिस्त का दूसरा आगमन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण सवाल लेकर आता है, जब मानव पुत्र इस धरती पर आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा? विश्वास हमारे लिए एक उपहार है, संत पापा लिखते हैं, जो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति को व्यक्त करता है, लेकिन यह अपने में एक कार्य भी है, जो हमसे स्वतंत्रता की मांग करता है, जहां हम यीशु के प्रेममय आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी बने रहने को कहे जाते हैं। ऐसा है कि हमें आशा का साक्ष्य देने की आवश्यकता है। यद्यपि कब और कहां हमें इस साक्ष्य को प्रस्तुत करना है, निश्चित रूप से शारीरिक रूप में दुख में पड़ी मानवता की सेवा करते हुए, उन लोगों की तरह जो सपने देखने का साहस करते हैं। हम अपनी खुली आँखों से सपने देखें, प्रेम की चाहत से प्रेरित होकर भ्रातृत्व, मित्रता और सबों के लिए न्याय की चाह रखते हुए। ख्रिस्तीय मुक्ति दुख से भरी दुनिया में प्रवेश करती है, जो न केवल मानवता का बल्कि सारे विश्व का आलिंगन करती है, प्रकृति का और हमारे घर और मानवीय पर्यावरण में। मुक्ति सृष्टि का आलिंगन करती है। मानव एक धरातली स्वर्ग धरती माता हो, जो हमारे लिए एक खुशी का स्थल और सारी खुशियों की प्रतिज्ञा लाती हो। हमारी ख्रिस्तीय आशा जीवन की आशा में गढ़ी गई है। यह इस बात का अनुभव करना है कि सारी चीजें ईश्वर की महिमा हेतु सुसज्जित हैं। उनकी शांति में अंतिम परिणति और धार्मिकता में शारीरिक पुनरुत्थान तक, जैसे हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं। फिर भी समय के अनुसार हम दुख और पीड़ा से मुक्त नहीं किए जाते हैं। सारी सृष्टि प्रसव वेदना से कराहती है, हम ख्रिस्तीय कराहते हैं और हमारी आत्मा स्वयं कराहती है। इस कराह में हम लालसा और इच्छा के साथ साथ आशंका और पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। यह ईश्वर में हमारे विश्वास और हमारे बीच में उनकी प्रेमपूर्ण लेकिन मांग भरी उपस्थिति पर हमारी निर्भरता को आवाज देती है। लेकिन हम उनकी योजना की पूर्ति की आशा करते हैं, जो पवित्र आत्मा में आनंद, प्रेम और शांति है। श्रोताओं, सारी सृष्टि अपने में नए जन्म की प्रक्रिया में पड़ी है और कराहते हुए अपने में मुक्ति की चाह रखती है। यह अपने में अदृश्य और अविचारणीय विकास की प्रक्रिया को धारण करती है, उसी भांति जैसे एक राई का दाना जो अपने में विशाल वृक्ष बनता है, या आटे में खमीर। शुरुआत अपने में छोटे होते हैं, लेकिन इसके द्वारा आने वाला परिणाम अपनी सुंदरता में अनंत हो सकता है। जन्म की प्रत्याशा के समान ईश्वरीय संतानों के रहस्युद्ध घाटन आशा को प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच रहने, क्लेश के समय या मानवीय बुराई के सामने हिम्मत न हारने की संभावना के रूप में देखी जा सकती है। ख्रिस्तीय आशा निराश नहीं करती, न ही यह धोखा देती है। सृष्टि ख्रिस्तीय और आत्मा की वेदना, यह पहले से ही क्रियाशील मुक्ति की प्रत्याशा और अपेक्षा है। वहीं हम अपने को उन चीजों के प्रति सहनशील पाते हैं जिसकी चर्चा संत पौलुस करते हैं। विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नंगनता, जोखिम, तलवार। आशा इस भांति अपने में इतिहास और मानवीय कार्यों का एक वैकल्पिक पाठ है। यह भ्रमपूर्ण नहीं है, बल्कि वास्तविक है। विश्वास की एक सच्चाई जिसके द्वारा हम अदृश्य को देखते हैं। यह आशा हमारे लिए धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा है, जैसे कि अब्राहम ने किया। संत पापा फियोरो के जुआकिम कैलाब्रियन मठवासी एक महान विश्वासी दृष्टता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वे दांते अलिग्रिये के शब्दों में भविष्यवाणी की शक्ति से नवाजे गए थे। धर्मपीठ और साम्राज्य के बीच धर्म युद्ध के समय कलिसा में विधर्म का प्रकोप और बढ़ती सांसारिकता की स्थिति में वे लोगों के बीच सह अस्तित्व की एक नई भावना का आदर्श प्रस्तुत करने में सक्षम थे, जो सार्वभौमिक बंधुत्व और ख्रिस्तीय शांति पर आधारित था, जो सुसामाचारी भावना में जीवन जीने का फल था। संत पापा कहते हैं कि उन्होंने इस सामाजिक मित्रता और वैश्विक भ्रातृत्व का जिक्र अपने विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती में किया है, लेकिन नर और नारियों के बीच इस एकता को सृष्टि में भी प्रसारित होने की जरूरत है, जहां हम मानव केंद्रवाद की स्थिति और एक मानवीय समग्र पारिस्थितिकी के प्रति जिम्मेदारी की भावना को पाते हैं, जो हमारे सामान्य घर और उसमें रहने वाले हम लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग है। श्रोताओ, हमने अपने बुधवार आज के प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के सृष्टि की देखरेख हेतु वैश्विक प्रार्थना दिवस पर एक चर्चा सुनी। हम आने वाले बुधवार भी इसकी चर्चा जारी रखेंगे।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने जुलाई महीने के लिए अपनी प्रार्थना मनोरथ जारी किया और ख्रिस्तियों को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया कि कलीसिया बीमार से पीड़ित लोगों के लिए ईश्वर की निकटता दिखा सके। संत पापा ने अपने वीडियो संदेश में कहा, आइए हम प्रार्थना करें कि रोगियों के अंतमलन का संस्कार उन लोगों को जो इसे प्राप्त करते हैं और उनके प्रियजनों को प्रभु की शक्ति प्रदान करें और यह सभी के लिए करुणा और आशा का दृश्यमान संकेत बन जाए। संत पापा ने याद दिलाया कि बीमारों का अंतमलन संस्कार केवल मृत्यु की कगार पर खड़े लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई सोचता है कि पुरोहित द्वारा अंतमलन संस्कार दिए जाने का मतलब है कि वे मरने वाले हैं, तो उन्होंने एक निराशाजनक दृष्टि को अपनाया है। संत पापा ने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि बीमारों का विलेपन चिकित्सा के संस्कारों में से एक है, पुनर्स्थापना का, जो आत्मा को ठीक करता है। उन्होंने कहा कि अंतमलन का संस्कार हमेशा बीमार लोगों, खासकर बुजुर्गों के लिए उपलब्ध है। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसे रोगियों का अंतमलन संस्कार देना उचित है। संत पापा फ्रांसिस प्रार्थना करते हुए संदेश को समाप्त किया कि संस्कार करुणा और आशा का अधिक दृश्यमान संकेत बन सके। संत पापा के वीडियो को संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क द्वारा निर्मित किया गया है। वीडियो को अमेरिका के एलन टाउन और लॉस एंजल्स धर्म प्रांतों की मदद से फिल्माया गया। यह उन स्थितियों के लिए एक दृश्य सहायता प्रदान करता है जिसमें बीमारों को अंतमलन का संस्कार दिया जा सकता है। संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक फादर फ्रेडरिक फर्नोस एसजे ने कहा कि संत पापा कैथोलिकों को संस्कार के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत पापा को आशा है कि हम इस संस्कार की पूरी गहराई और सही अर्थ को फिर से खोज पाएंगे, न केवल मृत्यु की तैयारी के रूप में, बल्कि एक ऐसे संस्कार के रूप में भी जो गंभीर बीमारी के समय रोगियों को सांत्वना देता है और उनके प्रियजनों और उनकी देखभाल करने वालों को शक्ति देता है। और संत पापा फ्रांसिस ने प्रवासियों के एक समूह से मुलाकात की जिसमें सेनेगल और गाम्बिया के लेखक शामिल हैं, जिन्होंने नए घर की तलाश में अपने संघर्षों के बारे में किताबें लिखी हैं। मंगलवार दोपहर को प्रवासियों के एक समूह ने कासा सांता मार्ता का दौरा किया ताकि वे एक ऐसे व्यक्ति को जान सके जिसे वे पिता और सभी के चरवाहे के रूप में देखते हैं। उक्त बात समूह के साथ आए फादर मतिया फेरारी ने कहा, मंगलवार की बैठक में मुख्य दो युवा लोग थे, इब्राहिम लो जो सेनेगल से आए थे और इब्राहिम कुयाते जो मूल रूप से गाम्बिया से थे। दोनों ने यूरोप आने के लिए लीबिया का मार्ग अपनाया। इब्राहिम रोटी और पानी सेनेगल से इटली वाया लीबिया और मेरी आवाज अफ्रीका के तटों से यूरोप की सड़कों तक के लेखक हैं, जबकि एब्रिमा ने अपनी कहानी एक पुस्तक में साझा की जिसका शीर्षक है मैं मेरे नंगे पैर। इस पुस्तक की प्रस्तावना अन्य लोगों के अलावा मेदोना नांतोला के महाधर्माध्यक्ष एरियो कास्टेलुची और उपसहार प्रवासन संगठन के निदेशक स्टेफानो क्रोसी द्वारा लिखी गई है। फादर मतिया ने बताया कि संत पापा फ्रांसिस उनकी कहानियां सुनना चाहते थे और हर किसी को उनके काम और उनके जीने के तरीके के लिए धन्यवाद देना चाहते थे और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और भले ही कभी कभी कूटनीतिक प्रयासों से छोटे परिणाम मिलते हों, लेकिन हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए या हार मानने के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। शांति हर किसी का कर्तव्य है और इसकी शुरुआत हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शहरों में, हमारे देशों में, दुनिया में होती है। यह बात वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने रोम में वाटिकन के इतालवी दूतावास में राजदूतों के साहित्यिक पुरस्कार समारोह के अवसर पर कही। यह पुरस्कार परम धर्मपीठ की मान्यता प्राप्त मिशन प्रमुखों के एक समूह के पहल पर 2019 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार संस्कृति और ख्रीस्तीय मूल्यों, ख्रीस्तीय कलीसियाओं और राज्यों के बीच संबंधों, कलीसियाओं के इतिहास और अंतरधार्मिक संवाद से संबंधित विषयों पर आम जनता के लिए इतालवी लिखित पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान इतालवी RAI पत्रकार पियेरो दमासो की पुस्तक क्या कलीसिया युद्ध को रोक सकती है को दिया गया। यह पुस्तक विश्व में शांति के लिए संत पापा जोन 23वें के दूसरे विश्वव्यापी पत्र पाचिम इंतेरिस पर प्रकाश डालती है और 50 से अधिक साक्षात्कारों में निहित प्रस्तावों और विश्लेषणों के माध्यम से शीर्षक में उठाए गए मौलिक प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास करती है। क्या कलीसिया युद्ध को रोक सकती है और कैसे? कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने कई गवाहों और शिक्षाविदों से बात करके एक दिलचस्प तरीके से शांति की गहन इच्छा को सामने लाने के लिए दमासो की पुस्तक की प्रशंसा की। संघर्षों को रोकने की वास्तविक शक्ति न होने के बावजूद कलीसिया सार्वभौमिक मानवीय विवेक से कार्य करने का आह्वान कर सकती है ताकि घृणा और शत्रुता की दीवारों को तोड़ा जा सके जो न्याय, एकजुटता, समावेश और पृथ्वी की देखभाल के लिए भाईचारे को सच्चा मार्ग दर्शाता है। उधर टायर के मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि गाजा में चल रहे युद्ध के कारण लेबनान अपने दक्षिणी क्षेत्रों में नए सिरे से सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहा है। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र, विशेष रूप से इसराइली सीमा के पास प्रतिदिन रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो 2019 में शुरू हुए देश की आर्थिक संकट के कारण होने वाली कठिनाइयों को और बढ़ा रहा है। महाधर्माध्यक्ष चारबेल अब्दुल्ला लेबनान में एड टू द चर्च इन नीड ACN को बताया कि उनके लोगों के सामने गंभीर स्थिति है। गाजा में वैश्विक मीडिया ने इस तथ्य को दबा दिया है कि दक्षिणी लेबनान में भी एक सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आबादी रॉकेट के शोर को अब और नहीं झेल सकती और सदमे में है। उन्हें वास्तव में हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।